शारदा यानी नानी माँ अपनी आंखें दिखाते हुए बोली, तू अपनी फालतू की बकवास बंद कर, तू अकेला नहीं जाएगा। सिंघानिया मेंशन, मैं चलूंगी तेरे साथ, मैं उन लोगों की खटिया खड़ी करूंगी जाकर। ऐसे बोलकर नानी माँ, जो पिछले एक महीने से अपने आप को जैसे तैसे चुप करके बैठी हुई थी और अपनी बेटी के ठीक होने की दुआ कर रही थी, अब अपनी बेटी से मिलने के बाद एक अलग तरह की हिम्मत से भर गई थी। इसलिए वो अब सीधे सीधे सिंघानिया में जाकर आस्था के बारे में बात करके उसे अपने साथ लेकर आना चाहती थी। प्रियंका और सीमा को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि आस्था कहाँ है कहाँ नहीं, वैसे भी आस्था को वे अपने लिए बोझ ही समझती थी। लेकिन प्रियंका ने जब से अरमान सिंघानिया को देखा था, तब से उसका दिल कुछ अजीब सा हो गया था। वो सोचने लगी, अगर इतना हैंडसम लड़का और इतना अमीर है तो उसका थोड़ा सा एरोगेंट और खड़ूस होना तो बनता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, बंदा तो देखने लायक है ना। प्रियंका की नीयत अरमान को लेकर बदल रही थी। रात गहरी हो चुकी थी और इन सब चक्करों में रात के एक बज चुके थे। नानी माँ का बस चलता तो वो अभी रात के इसी समय सिंघानिया मेंशन में चली जाती, लेकिन फिलहाल उन्हें बेसब्री से सुबह होने का इंतजार था। तब तक वो अपनी बेटी के लिए दुआएं कर रही थी। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि, जो उस वक्त आकाश के कमरे में फंस चुकी थी क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जितने भी गेस्ट्स थे उन्हें अलग अलग कमरों में बंद कर दिया था और वहां से सेफली उन्हें निकालकर भेज भी दिया गया था, लेकिन आकाश के कमरे की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। वो विला के सिक्योरिटी गार्ड्स को अच्छी तरह से जानती थी कि ये आकाश का कमरा है और आकाश के कमरे में भला कौन जाने की हिम्मत करेगा, तो ये सोचते हुए कोई भी आकाश के कमरे में नहीं गया था। डॉक्टर रश्मि को 2 से 2.5 घंटे हो चुके थे, वो उस वक्त आकाश के कमरे में ही थी। कुछ देर आकाश के कमरे को अच्छी तरह से देखने के बाद आकाश का कमरा बड़ा ही खूबसूरत था। कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहां रखी हुई थीं। तभी डॉक्टर रश्मि की नज़र एक ओल्ड सी अलमारी पर गई। उस अलमारी में कुछ डायरी राखी वगैरह रखी हुई थी। पूरे कमरे में एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन एक पुरानी सी अलमारी देखकर रश्मि चौंक गई और उसने अनायास उसे खोल लिया। एक डायरी उसके हाथों में आ गई और उस डायरी में वो सन लिखी हुई थी जिस सन में वे लोग एक साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, यानी कि ये स्कूल टाइम की डायरी थी। ये देखकर डॉक्टर रश्मि चौंक गई और उसने वो डायरी लेकर अपने बैग में रख ली। चूंकि वो काफ़ी देर से उस कमरे में बंद थी, वो जल्दी आकाश के बेड पर बैठ गई और एक गहरी नींद में सो गई। वहीं आकाश डेविड को अरमान के फार्म हाउस में छोड़ने के बाद अच्छी तरह से अपने सिक्योरिटी गार्ड्स की क्लास लेने के बाद अपने विला में आया। पूरा हॉल, जो बैलून्स वगैरह और बर्थडे पार्टी की डेकोरेशन से सजा हुआ था, वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका था। कुछ घंटों के अंदर अंदर आकाश के सभी सर्वेंट ने पूरा विला एकदम क्लियर कर दिया था। अब पूरे विला में आकाश के अलावा कोई नहीं था और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आकाश ने बाहर काम पर लगा दिया था। साथ ही उन्हें सजा भी दी थी कि पूरी रात आज कोई नहीं सोएगा। आकाश सबको सोने के लिए बारी बारी से टाइम दिया करता था, लेकिन अब उसने सबको सजा दी थी कि उनके रहते कैसे पार्टी में गोली चल सकती है, तो इस बात का गुस्सा आकाश ने सिक्योरिटी गार्ड्स पर उतारा था और फटाफट से वो अपने वीरान विला में आया। पूरे विला को अच्छी तरह से देखने के बाद आकाश जल्दी से अपने कमरे में गया तो उसकी नज़र उसके ठीक सामने ब्लैक रंग के गाउन में सोई हुई डॉक्टर रश्मि पर पड़ी। डॉक्टर रश्मि उसे बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर रश्मि को अपने बेड पर सोया हुआ देखकर आकाश के चेहरे पर एक सुकून सा उमड़ आया। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया ने आस्था को सीधा अपने कमरे के बेड पर लिटाया। क्योंकि उस वक्त काफ़ी रात हो चुकी थी तो सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। आज आकाश अपने विला में था, सुमित, ध्रुव, आहान वो सब सिंघानिया मेंशन में अपने कमरों में चले गए थे। अब जो कुछ भी बात करनी थी उन लोगों को अगली सुबह ही करनी थी। वहीं आस्था, जो अरमान से डरकर बेहोश हो गई थी, अरमान कितनी देर तक बैठा हुआ आस्था को देखता रहा। आस्था उस रेड कलर की साड़ी में एकदम कयामत ढा रही थी। बार बार आस्था की इतनी खूबसूरती देखने के बाद अरमान की नीयत बदल रही थी और उसकी कमर के नेवल पर जाकर तो अरमान की नज़रें ठहर सी गई थी। वो खुद को रोक नहीं पाया और अनकॉन्शियस आस्था की दिखती हुई कमर को अपने होठों से चूम लिया। वही आस्था जो अनकॉन्शियस थी उसे एहसास नहीं था, लेकिन थोड़ा सा वो कसमसाने लगी। तभी अरमान ने उसके साड़ी का पल्लू उसके सीने से हटा दिया। अब तो आस्था की खूबसूरती उसकी आंखों के सामने थी। वो देखकर उसका गला बड़ी बुरी तरह से सूख रहा था और वो अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लगा, क्योंकि वो आस्था के साथ वो बर्ताव नहीं करना चाहता था जो उसने थोड़े दिन पहले किया था। क्योंकि पहले वो आस्था को अपने इत्मीनान पर लेना चाहता था। जिस तरह से आस्था के जाने पर वो बेचैनी से तड़प रहा था, वो उस तड़प का पता लगाना चाहता था। उसके बाद ही वो फिर रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता था। वो ये तो समझ चुका था कि आस्था डर के मारे बेहोश हुई है। तभी अरमान ने एक छोटी सी गोली जल्दी से उसके होठों को खोलकर उसके मुंह में डाल दी और फिर जुनून भरी आवाज में बोला, सो जाओ आफत, अभी तुम्हारी बेहोशी तुम्हारी नींद में बदल जाएगी और तुम्हें एक बहुत अच्छी और प्यारी नींद आएगी। लेकिन ये रात, ये सुकून की रात सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है।
उसके बाद तुम्हारा सोना भी मेरी मर्जी से होगा और जागना भी मेरी मर्जी से होगा। ये कहते हुए अरमान बड़ा ही डेंजरस लग रहा था। उसकी बातों में कुछ ऐसा था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। कितनी देर तक आस्था को देखने के बाद अरमान जल्दी ही वॉशरूम में घुस चुका था और चेंज करके जल्दी ही बेड पर आ गया। आस्था को उसने एक बार फिर नजर भर कर देखा। उसके बाद उसने उसे सीधा अपनी बाहों में भर लिया और उसे गले से लगाकर अपने सीने से लगाकर सो गया। जब से अरमान सिंघानिया मेंशन से गया था उसने खुद को हर्ट भी किया था। केवल दवाइयों के नशे में ही वो सोया करता था लेकिन अभी प्रॉपरली उसे एक बार भी नींद नहीं आई थी। लेकिन आज आस्था को अपनी बाहों में लेने के बाद वो एक बहुत सुकून भरी नींद सो गया। वाह। वही अगली सुबह जैसे ही आस्था की आंखें खुली उसे अपने ऊपर एक बड़ा सा भारीपन लगने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो उसका पूरा शरीर कहीं पत्थर के नीचे दबा हुआ हो। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखों के ठीक सामने अरमान का हैंडसम सा चेहरा था। अरमान को अपने सामने देखकर आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई क्योंकि उस वक्त पार्टी में वो बेहोश हो गई थी। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी पार्टी में हुआ था एक एक करके उसकी आंखों के सामने आ गया। वही अरमान जो आस्था को बाहों में लिए उस वक्त सुकून से सोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि आस्था जाग चुकी है लेकिन आस्था अरमान को अपने सामने देखकर अब एक बार फिर से कांपने लगी थी। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। आस्था की इस तरह से कांपने पर अरमान ने आंखें बंद किए हुए आस्था से बोला, ज्यादा हिलने डुलने कांपने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरी नींद खराब हुई तो फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती तब तक ऐसे ही लेटी रहो। अब जैसे ही अचानक अरमान ने आंखें बंद किए हुए उसे ऑर्डर दिया आस्था तो और भी ज्यादा शॉक हो गई थी क्योंकि इस वक्त अरमान ने पूरी तरह से उसे अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उनके बीच एक इंच का भी फासला नहीं था। अरमान का सर इस वक्त आस्था के कंधे पर था और एक हाथ से उसने आस्था की कमर को अपनी गिरफ्त में ले रखा था।
अरमान की सांसें आस्था की पूरी गर्दन पर पड़ रही थी। अब क्योंकि पहले तो आस्था नींद में थी और अरमान ने जो दवाई दी थी और वो गहरी नींद में चली गई थी लेकिन उसके बाद से उसकी बेहोशी खत्म हो गई थी। अब सुबह उठने पर अरमान के करीब होने पर उसका पूरा रोम रोम खड़ा हो गया। वो सिहर उठी थी। वहीं आस्था ने अरमान से कुछ नहीं कहा। वो तो बस अब अरमान के उठने का इंतज़ार करने लगी थी। उसने अरमान से ये भी नहीं बोला कि अगर आप इस तरह से अपने शरीर का पूरा भार हमारे ऊपर डाल देंगे तो हम सांस कैसे लेंगे। आस्था को उस वक्त सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी लेकिन मुंह बंद किए हुए वो चुपचाप पड़ी रही क्योंकि अरमान के नाम का एक अलग ही खौफ उसके दिल में बैठ गया था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अरमान से कुछ भी कह सके। जब से अरमान ने उसके साथ बाथरूम में हदपार करने की कोशिश की थी तब से वो अरमान को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी। उसने सोच लिया था कि वो हमेशा हमेशा के लिए अरमान से दूर चली जाएगी लेकिन अब इस तरह से अरमान का उसे जकड़कर सोने पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बस चुपचाप इसी तरह से लेटी रही और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे अपनी नानी माँ की एक बार फिर याद आने लगी थी। रह रहकर उसे यही लग रहा था कि कहीं ये राक्षस उसे एक बार फिर से कैद न कर ले। वहीं अरमान जो आस्था के जाने के बाद चार दिनों से सोया नहीं था, केवल दवाइयों के नशे में सोया करता था, अब वो आस्था को लेकर सुकून भरी नींद सो रहा था और पूरे 9 से 10 बजे वो नींद पूरी करने के बाद सोकर उठा था। तभी नीचे हॉल में से कुछ हल्ला शोर मचाने की आवाज़ें उसे सुनाई दी। जैसे ही अरमान सोकर उठा उसने आस्था की ओर देखा और अचानक सोकर उठते ही अरमान ने अपने होठों से आस्था के होठों को छू लिया और बोला, गुड मॉर्निंग आफत, अब फटाफट से उठ जाओ और तैयार हो जाओ। अरमान के इस तरह से बोलते हुए देखकर आस्था चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान उसे क्या कहना चाहता था और वो उसके साथ इतना नॉर्मल बर्ताव क्यों कर रहा था। कहीं ये किसी आने वाले खतरे की निशानी तो नहीं। अभी आस्था अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी और अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कुछ न कुछ सोच रही थी कि वो इस कमरे से फटाफट कैसे निकले और कैसे वो अपनी नानी माँ के पास जाए। वो आस्था को इस तरह से सोचते हुए अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए देखकर अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और अचानक अरमान अपनी गर्दन टेढ़ी करके आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ आफत, मुझसे बचना चाहती हो, मुझे छोड़कर भागना चाहती हो, आइडिया सोच रही हो यहाँ से निकलने का। जैसे ही अचानक अरमान ने ये सब बोला आस्था ने तुरंत अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया और वो मन ही मन में बोली, ये हमने क्या कर दिया, हमने उनके सामने कुछ भी सोचने की हिम्मत कैसे की, वो भी ये जानते हुए कि ये तो मन की बातें तक पढ़ लेते हैं। हे कान्हा जी, हमें बचा लीजिए, कहीं ना कहीं आस्था इस वक्त मन में प्रार्थना शुरू करने लगी। वहीं आस्था को टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए देखकर अरमान ने आस्था के सर पर हाथ मार लिया और मिस्टीरियस टोन में बोला, क्या हुआ आफत, एक बार फिर से अपने कान्हा जी को याद कर रही हो। जैसे ही अरमान ने ये बोला आस्था की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, मानो कि वो अरमान से पूछना चाह रही हो कि हर बार आपको कैसे पता चल जाता है कि हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अभी इससे पहले कि आस्था अरमान को कुछ कहती तभी अरमान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक किसी और ने नहीं बल्कि राजेश ने की थी जो कि अरमान का सर्वेंट था। अरमान अब एक नज़र आस्था की ओर देखता हुआ जल्दी ही दरवाज़ा खोला। सामने राजेश सर झुकाकर खड़ा हुआ था। तब अरमान एरोगेंट वॉइस में उससे बोला, बोलो क्या काम है। तब राजेश ने कहा,
बॉस, वो मालकिन की नानी माँ नीचे हॉल में आई हुई हैं। दादाजी आपको बुला रहे हैं। ये बोलकर राजेश बिना रुके वहां से चला गया। वहीं आस्था, जिसने राजेश की बात सुन ली थी, वो तुरंत खुशी से खड़ी हुई और तेजी से बोली, क्या? या, हमारी नानी माँ आई हैं, हम आ रहे हैं नानी माँ। ऐसा बोलकर जल्दी ही बेड से कूदकर आस्था जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, अरमान ने तुरंत आस्था का हाथ कसकर पकड़ लिया। आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी नजरें झुका ली। वहीं अरमान आस्था की झुकी हुई नजरों को देखता हुआ उसका पूरी तरह से मुआयना करने लगा, और फिर अरमान आस्था के करीब गया और उसे अपनी गोद में उठा लिया। अब तो आस्था की सांसें और तेजी से चलने लगीं। अपने आप ही आस्था के हाथ अरमान की गर्दन में फंस गए। तब अरमान ने आस्था को बेड पर बिठाया और खुद बड़े ही आराम से उसके सामने बैठा गया और घूरते हुए बोला, मेरी तरफ देखो। अब आस्था की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो अरमान की तरफ देखे, लेकिन अरमान आस्था से बोल रहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? अभी और इसी वक्त मेरी तरफ देखो। तब आस्था ने अरमान की ओर देखा। अरमान उसे अपनी ओर देखता हुआ देखकर मुस्कुराया और फिर अपने एक्सप्रेशन चेंज करते हुए बोला, नीचे तुम्हारी नानी माँ आई हैं, क्या तुम जानती हो तुम्हें क्या कहना है? अब आस्था की आंखों में कितने ही सारे सवाल आ गए थे, और आस्था हैरानी से अरमान की ओर देखकर बोली, हमें क्या क्या कहना है, मतलब हम आपकी बात नहीं समझे? तब आस्था को इस तरह से अटकता हुआ देखकर अरमान ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आस्था की ओर देखा। अब आस्था अरमान को इस तरह से अपनी ओर देखता हुआ डर गई थी, क्योंकि उस वक्त अरमान बड़ा ही अजीब सा, एकदम सनकी सा लग रहा था, जो उसे गर्दन टेढ़ी करके तिरछा मुस्कुराकर देख रहा था।